रूथ अध्याय एक। नावोमी के पति और पुत्रों की मृत्यु। प्रशासकों के शासनकाल में सारे देश में एक अकाल पड़ा। यहूदिया के बेथलेम नगर का एक व्यक्ति अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ मोआब देश में प्रवास करने के लिए चला गया। इस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नावोमी तथा उसके पुत्रों के नाम महलोन तथा किलियोन थे। ये यहूदा के बेथलेम के इफ्रत परिवार से थे। कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। अब नावोमी अपने पुत्रों के साथ अकेली रह गई। उनके पुत्रों ने मोआब देश की ही युवतियों से विवाह कर लिया। एक का नाम था ओरपा और दूसरी का रूथ। मोआब देश में उनके लगभग 10 वर्ष रहने के बाद महलोन तथा किलियोन की मृत्यु हो गई। अब नावोमी अपने दोनों पुत्रों तथा पति के बिना अकेली रह गई। नावोमी के प्रति रूथ की निष्ठा। यह पता पड़ने पर कि यहावे ने अपनी प्रजा को भोजन देकर उनकी शुद्धि ली है, नावोमी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मोआब देश से यहूदिया को लौट जाने का विचार किया। तब जहां वह रह रही थी वह स्थान छोड़कर अपनी बहुओं के साथ यहूदिया के मार्ग पर चल पड़ी। मार्ग में नावोमी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। यहावे तुम पर वैसे ही दयालु हो जैसी तुम मृतकों तथा मुझ पर दयालु रही हो। यहावे की कृपा दृष्टि में तुम्हें अपने अपने होने वाले पति के घर में सुख शांति प्राप्त हो। तब नावोमी ने उनको चूमा और वे फफक फफक कर रोती रही। उन्होंने नावोमी को उत्तर दिया, नहीं, हम आपके साथ आपके ही लोगों में जा रहेंगी। किंतु नावोमी ने उनसे कहा, लौट जाओ मेरी पुत्रियों, तुम भला क्यों मेरे साथ जाओगी? क्या अब भी मेरे गर्भ में पुत्र है जो तुम्हारे पति बन सके? लौट जाओ मेरी पुत्रियों, अपने घर लौट जाओ, क्योंकि मेरी आयु वह नहीं रही कि मैं दोबारा विवाह कर सकूं। यदि मैं यह भी कहूं कि मुझे आशा है, यदि मैं आज रात विवाह कर गर्भ धारण भी कर लूं, तो क्या तुम उनके युवा होने का इंतजार करोगी? तो क्या तुम तब तक विवाह ना करोगी? नहीं मेरी पुत्रियों, मेरे हृदय का दुख बहुत ही गहरा है, क्योंकि स्वयं यहावे मेरे विरुद्ध हो गए हैं। तब वे दोबारा फफक फफक कर रोने लगी। फिर ओरपा ने अपनी सास को चूमा और उनसे विदा हो गई, किंतु रूथ ने अपनी सास को ना छोड़ा। नावोमी ने रूथ से कहा, सुनो, तुम्हारी जेठानी तो अपने लोगों तथा अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी के समान लौट जाओ। किंतु रूथ ने उसे उत्तर दिया, आप मुझे ना तो लौट जाने के लिए मजबूर करें और ना आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जहां भी जाएंगी मैं आपके ही साथ जाऊंगी, और जहां आप रहेंगी मैं वहीं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे तथा आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर। जिस स्थान पर आप आखिरी सांस ले मैं भी वहीं आखिरी सांस लूं, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाए। अब यदि मृत्यु के अलावा मेरा आपसे अलग होने का कोई और कारण हो तो यहावे मुझे कठोर से कठोर दंड दे। जब नावोमी ने यह देखा कि रूथ उनके साथ जाने के लिए दृढ़ निश्चय है, तब उन्होंने रूथ को मजबूर करने की और कोशिश ना की। तब वे आगे चलते चलते बैथलेम पहुंच गई। जब उन्होंने बैथलेम नगर में प्रवेश किया, उन्हें देख नगर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। अचंभे में स्त्रियां पूछने लगी, कहीं यह नावोमी तो नहीं? मत कहो मुझे नावोमी, मारा कहो मुझे मारा। उसने उत्तर दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन को कड़वाहट से भर दिया है। मैं यहां से तो भरी पूरी गई थी, किंतु यहावे मुझे यहां खाली हाथ लौटा लाए हैं, तब मुझे नावोमी क्यों पुकारा जाए? जब यहावे ने ही मुझे यह दंड दिया है तथा सर्वशक्तिमान द्वारा ही मुझ पर यह मुसीबत डाली गई है। इस प्रकार नावोमी मोआब देश से अपनी बहु रूथ के साथ, जो मोआब की रहने वाली थी, लौट आई। बेथलेहम नगर में यह ज्यों की कटाई का समय था। रूथ अध्याय 2। बोआज के खेत में रूथ। नावोमी के पति के बोआज नाम के एक रिश्तेदार था। वह एलीमेलेक के परिवार से एक नामी और धनी व्यक्ति था। मोआबी रूथ ने नावोमी से पूछा, क्या आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं खेतों में किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जाकर, जो मुझे इसकी अनुमति दे दे कि गिरी हुई सिल्ला इकट्ठी करूं, नावोमी ने उत्तर दिया, जाओ मेरी बेटी। सो रूथ ने खेत में जाकर फसल काटने वालों के पीछे पीछे बाले इकट्ठी करना शुरू कर दिया। संयोग से यह खेत एलीमेलेक के रिश्तेदार बोआज का था। कुछ ही समय बाद जब बोआज बेथलेम नगर से वहां खेत में आए, उन्होंने फसल काटने वालों को नमस्कार करते हुए उनसे कहा, यहावे आपके साथ रहे। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, यहावे की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। बोआज ने फसल काटने वालों के प्रभारी से पूछा, यह युवती कौन है? फसल काटने वालों के प्रभारी ने उत्तर दिया, यही है वह मोआबी युवती जो मोआब देश से नावोमी के साथ आई है। उसने मुझसे अनुमति मांगी थी मुझे काटने वालों के पीछे पीछे पूलियों के बीच से गिरी हुई सिल्ला इकट्ठी करने दे। यह सुबह से आई हुई है और थोड़े से आराम के अलावा तब से अब तक काम ही कर रही है। तब बोआज ने रूथ से कहा, बेटी ध्यान से सुनो, किसी दूसरे खेत में बाले बीनने ना जाना और ना ही इस खेत से बाहर जाना। बेहतर होगा कि तुम मेरी इन दासियों के पास ही बनी रहे। यह ध्यान रहे कि वे किस खेत में कटनी कर रही है, कि तुम उनके पीछे पीछे सिल्ला बीन करते जाना। मैंने अपने दासों को आदेश दिया है कि वे तुम्हें किसी भी प्रकार का तकलीफ ना दें। जब तुम्हें प्यास लगी तो जाकर दासों द्वारा भरे गए मटकों से पानी पी लेना। रूथ ने भूमि तक झुककर दंडवत करते हुए कहा, क्या कारण है जो मुझ विदेशी स्त्री पर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई और आपने मेरी इतनी चिंता की है? बोआज ने उत्तर दिया, अपने पति की मृत्यु से लेकर अब तक तुमने अपनी सास के लिए जो कुछ किया है तथा जिस प्रकार तुम अपने माता पिता का घर तथा अपनी मातृभूमि को छोड़कर पूरी तरह से अनजाने लोगों के बीच आ गई हो, इसका पूरा वर्णन मुझे सुनाया गया है। तुमने जो कुछ किया है, यहावे तुम्हें उसका प्रतिफल दे, तथा इज़राइल का परमेश्वर यहावे ही, जिसके पंखों के नीचे तुमने शरण ली है, तुम्हें इसका विपुल पुरस्कार दे। रूथ ने उनसे कहा, महोदय, हालांकि मैं आपकी इन दासियों के बराबर भी नहीं हूं, आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की, मुझसे कोमल शब्दों में बातें की हैं, आपने मुझे प्रोत्साहित किया है। भोजन के समय बोआज ने रूथ से कहा, यहां आ जाओ, मेरे साथ भोजन करो और अपने कोर को सिरके में डुबोती जाओ। सो वह फसल काटने वालों के साथ बैठ गई और बोआज ने उसे भुना हुआ अनाज भी दे दिया, जिसे उसने न केवल भरपेट खाया बल्कि उसके पास कुछ अन्न भी बचा रह गया। जब वह गिरी हुई बाले इकट्ठी करने के लिए दोबारा उठी, बोआज ने दासों को आज्ञा दी, यदि वह पूलियों के बीच से भी इकट्ठा करने लगे, ना उसे रोकना और ना उसे डांटना, और हाँ, ऐसा करने कुछ बाले पूलियों में से खींचकर भी डाल देना कि वह उन्हें भी बीनकर इकट्ठा कर ले। सो वह शाम तक भूमि पर गिरी हुई बाले इकट्ठी करती रही। जब उसने दाने अलग किए, उनकी मात्रा लगभग 13 किलो निकली। वह इसे लेकर नगर में गई और अपनी सास के सामने यह अन्न तथा उस भोजन को भी रख दिया जो उसके तृप्त होने के बाद बचा रह गया था। उसकी सास ने उससे पूछा, तुमने बाले कहाँ से बीनी? तुम किस जगह पर काम करती रही? धन्य है वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा ध्यान रखा। तब रूथ ने अपनी सास को बताया कि उसने किसके साथ काम किया था। जिस व्यक्ति के यहाँ मैंने आज काम किया है, उनका नाम बोआज है। तब नावोमी ने रूथ से कहा, यहावे की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे जो ना तो जीवितों को अपनी कृपा से दूर रखते हैं और ना मरे हुओं को। नावोमी ने यह भी कहा, वह व्यक्ति हमारा नज़दीकी रिश्तेदार है, हमारा एक छुड़ाने वाला भी। मोआबी रूथ ने आगे कहा, इसके अलावा उन्होंने मुझसे यह भी कहा है, इसका ध्यान रखना कि तुम कटनी खत्म होने तक मेरे दासों के पास ही रहो। तब नावोमी ने अपनी बहू रूथ से कहा, मेरी बेटी, यह तुम्हारे भले के लिए ही है कि तुम इन दासियों के साथ हो, नहीं तो किसी दूसरे के खेत में तुम्हें परेशान किया जा सकता था। तो जौ और गेहूं की कटनी खत्म होने तक रूथ बोआज की दासियों के साथ साथ ही बनी रही, वह अपनी सास के साथ ही रहती थी। रूथ अध्याय 3। रूथ अपनी सास के साथ ही रहती रही। एक दिन रूथ की सास नावोमी ने रूत से कहा, मेरी बेटी, क्या यह मेरी जवाबदारी नहीं कि मैं तुम्हारा घर बसाने का प्रबंध करूं, कि अब इसमें तुम्हारा भला हो। सुनो, बोआज हमारे रिश्तेदार हैं, जिनकी दासियों के साथ तुम काम कर रही थी। देखो, आज शाम वह खलियान में जों फटकेंगे, सो अच्छी तरह से स्नान करके तैयार हो जा। सबसे अच्छे कपड़े पहनकर खलियान में जाना, किंतु ध्यान रहे जब तक बोआज भोजन खत्म ना कर ले, तुम उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास ना होने देना। किंतु तुम उस स्थान को अच्छी तरह से देख लेना जहां वह सोने के लिए गए हैं। इसके बाद तुम वहां जाना और उनके पैरों की चादर उठाकर तुम खुद भी वहीं लेट जाना। इसके बाद तुम्हारा क्या करना सही है वही तुम्हें बताएंगे। जो जो आपने कहा है मैं ठीक वैसा ही करूंगी, रूथ ने इसके उत्तर में कहा। सो रूथ खलियान में गई और वहां उसने ठीक वही किया जैसा उसकी सास ने उसे कहा था। बोआज बहुत ही खुश थे। जब उन्होंने खाना पीना खत्म किया, वह अनाज के ढेर के पास सोने के लिए चले गए। तब रूथ दबे पांव वहां आई और बोआज के पैरों की चादर उठाकर वहां लेट गई। बीच रात में जब बोआज ने करवट ली तो वह चौंक पड़े कि एक स्त्री उनके पैरों के निकट लेटी हुई थी। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? मैं रूथ हूं, आपकी दासी, रूथ ने उत्तर दिया। आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, सो अपनी दासी को अपने पंखों की शरण प्रदान करें। बेटी, बोआज ने इसके उत्तर में कहा, यहावे की कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहे। समर्पण और निष्ठा की तुम्हारी यह प्रीति तुम्हारे पहले की प्रीति से बढ़कर है। तुमने यहाँ के किसी भी धनी या साधारण युवक से विवाह का विचार नहीं किया। अब मेरी बेटी, किसी भी विषय की चिंता ना करो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं सभी कुछ करूंगा, क्योंकि नगर में सभी को यह मालूम है कि तुम अच्छे चरित्र की स्त्री हो। यह सही है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, किंतु इस रीति में एक और व्यक्ति है जिसका अधिकार मुझसे पहले है। अभी तुम यहीं ठहरो, सुबह यदि वह व्यक्ति अपना दायित्व पूरा करता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जीवित यहावे की शपथ मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। सुबह होने तक यहीं सोती रहो। सो रूथ सुबह होने तक बोआज के पैताने सोती रही, किंतु इसके पहले कि उजाला हो और कोई उन्हें पहचान सके, वह उठ गई। बोआज ने उससे कहा, किसी को यह पता ना चले कि तुम खलिहान में आई थी। तब बोआज ने उससे आगे कहा, अपनी ओढ़नी आगे फैलाओ। सो उसने अपनी ओढ़नी वहां बिछा दी। बोआज ने 6 माप जो उसकी ओढ़नी में डाल दिए और उसे उसके कंधे पर रख दिया और वह नगर में चली गई। जब रूथ अपनी सास के पास पहुंची, नावोमी ने उससे पूछा, मेरी पुत्री, बताओ कैसा रहा? तब रूथ ने अपनी सास को वह सब बता दिया जो बोआज ने उसके लिए किया था। रूथ ने आगे कहा, उन्होंने मुझे ये 6 माप जो भी यह कहते हुए दिए हैं, अपनी सास के पास खाली हाथ ना जाना। इस पर नावोमी ने रूथ से कहा, मेरी पुत्री, अब धीरज धरकर देखती जाओ कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि वह व्यक्ति आज इस विषय को सुलझाए बिना शांत ना बैठेगा। रूथ अध्याय 4। रूथ और बोआज की शादी। उसी समय बोआज नगर द्वार पर जाकर बैठ गए और जब वहां वह छुड़ाने वाला आया जिसका वर्णन बोआज रूथ से कर चुके थे, बोआज ने उनसे कहा, मित्र यहां आइए और मेरे पास बैठिए। सो वह जाकर बोआज के पास बैठ गया। इसके बाद बोआज ने नगर के पुरनियों में से 10 को भी वहां बुलवा लिया और उनसे विनती की, कृपया यहां बैठिए। सो वे सब बैठ गए। तब बोआज ने उस छुड़ाने वाले से कहा, नावोमी, जो मोआब देश से लौट आई है, एलीमेलेक हमारे रिश्तेदार की भूमि का एक भाग बेच रही है। सो मैं यह सही समझता हूं कि मैं आपको इसकी सूचना इन शब्दों में दे दूं, इस जमीन को इन गवाहों की उपस्थिति में तथा हमारे नागरिकों के पुर्णियों की उपस्थिति में खरीद लो। यदि तुम इसको छुड़ाना चाहो इसको छुड़ा लो, किंतु यदि तुम छुड़ाना ना चाहो मुझसे कह दो कि मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसका और कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है, तुम्हारे बाद मैं छुड़ा सकता हूं। उस छुड़ाने वाले ने कहा, मैं इसको छुड़ा लूंगा। इस पर बोआज ने कहा, जिस दिन तुम नावोमी से उस जमीन को खरीदोगे, तुम्हें मोआबी रूथ को, जो उस मृतक रिश्तेदार की विधवा है, भी मोल लेना पड़ेगा कि मृतक का नाम इस संपत्ति के साथ बना रह सके। इस पर उस छुड़ाने वाले ने कहा, इस स्थिति में मैं इसको छुड़ाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर अपने ही वंश का नुकसान कर बैठूंगा। छुड़ाने का यह अधिकार अब तुम ले लो, क्योंकि मैं यह छुड़ाने में असमर्थ हूँ। इसराइल में पुराने समय से यह प्रथा चली आ रही थी कि छुड़ाने की प्रक्रिया में लेन देन को पक्का करने के प्रमाण के रूप में छुड़ाने वाला अपना जूता उतारकर दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया करता था। इसराइल देश में लेन देन पक्का करने की यही विधि थी। सो जब उस छुड़ाने वाले ने बोआज से कहा, तुम स्वयं भी इसे खरीद लो, उसने अपना जूता उतारकर बोआज को दे दिया। तब बोआज ने पुरनियों तथा सभी उपस्थित लोगों को यह कहा, आज आप सभी इस बात के गवाह है कि मैंने नावोमी से वह सब खरीद लिया है जो एलीमेलेक का तथा किलियोन तथा महलोन का था। साथ ही मैंने महलोन की विधवा मोआबी रूथ को अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार कर लिया है कि मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए संतान पैदा हो और उसके जन्म स्थान तथा उनके रिश्तेदारों में मृतक का नाम मिटने ना पाए। आप सभी आज इसके गवाह हैं। इस पर नगर द्वार की सारी भीड़ तथा नगर के पुरनियों ने उत्तर दिया, हम इसके गवाह हैं। जो स्त्री तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रही है, यहावे उसे राहेल तथा लिया के समान बनाए, जो दोनों ही इसराइल के सारे गोत्रों का मूल हैं। तुम एफराथा में संपन्न होते जाओ और बेथलेम में तुम्हारा यश फैल जाए। यहावे द्वारा तुम्हें जो संतान इस स्त्री से मिले, वह पेरेज के समान हो जो यहूदा के तामार द्वारा प्राप्त हुए थे। नावोमी का पोता। बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया, और जब वह उसके पास गया, यहावे ने रूथ को गर्भ धारण की क्षमता दी और उसे एक पुत्र पैदा हुआ। स्त्रियां आकर नावोमी से कहने लगी, धन्य है यहावे जिन्होंने आज आपको छुड़ाने वाले के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल देश में इस छुड़ाने वाले का बड़ा नाम हो जाए। वह आप में जीवन भर देगा और आपके बुढ़ापे में वही आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। उसका प्रेम आप पर बहुत ही अपार है, जो आपके लिए 7 पुत्रों से कहीं अधिक बढ़कर है। तब नावोमी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और धाई के समान उसकी देखभाल करने लगी। पड़ोसी स्त्रियों ने बच्चे को एक नाम दिया। उनका कहना था, नावोमी को एक बेटा हुआ है। उनके द्वारा बच्चे को दिया गया नाम था ओबेद। यही येशे का पिता हुआ जो राजा दाविद के पिता थे, अर्थात राजा दाविद के दादा। दाविद की वंशावली। पेरेज की वंशावली इस प्रकार हुई। पेरेज हेजरोन के, हेजरोन राम के, राम अबीनादाब के, अबीनादाब नहशोन के, और नहशोन सलमोन के, सलमोन बोआज के, बोआज ओबेद के, ओबेद येशे के, और येशे राजा दाविद के पिता हुए।